इत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश इत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। ज्ञान गोष्ठी में आप सबका फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसे शख्स की दुनिया में उतर रहे हैं जिसने 20वीं सदी पर एक बहुत भारी और हाँ अक्सर खौफनाक छाप छोड़ी, जोसेफ स्टालिन।
नमस्कार।
और आज इस सफर में हमारी गाइड होगी रॉबर्ट सर्विस की लिखी हुई एक जबरदस्त जीवनी, स्टालिन अ बायोग्राफी। ये किताब देखो, स्टालिन को सिर्फ एक क्रूर तानाशाह की तरह नहीं देखती।
हाँ, वो टिपिकल विलन वाली छवि नहीं है।
बिल्कुल नहीं, ये किताब उसे एक जटिल इंसान की तरह समझने की कोशिश करती है। मतलब न वो पूरी तरह राक्षस था, न ही कोई महान निर्माता जैसा कि अलग अलग प्रोपेगेंडा में दिखाया जाता रहा है।
तो सवाल उठता है कि भाई आज इतने सालों बाद स्टालिन पर बात करना क्यों जरूरी है? क्या ये सिर्फ इतिहास की बात नहीं?
देखो, लगता तो ऐसा है पर शायद नहीं। सत्ता हासिल करने और उसे बनाए रखने के उसके तरीके करता है। इसे समझने के लिए स्टालिन एक जरूरी केस स्टडी है आज भी।
बिल्कुल, सर्विस की किताब यही दिखाती है कैसे एक व्यक्ति की साइकोलॉजी, उसके बिलीव्स और उस वक्त के हालात, ये सब मिलकर एक पूरा युग बना सकते हैं, लाखों लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं।
और सवाल ये है कि जॉर्जिया का एक साधारण लड़का जो कभी पादरी बनने वाला था,
हाँ पादरी,
वो दुनिया के सबसे बड़े देश का बेताज बादशाह कैसे बन गया? और उसने सोवियत संघ को सुपर पावर तो बनाया, लेकिन उसकी कीमत लाखों जाने।
तो चलिए इसी कॉम्प्लेक्स कहानी की परतें खोलते हैं। अच्छा, पहले लेखक की बात कर लें, रॉबर्ट सर्विस। ये कोई ऐरे गहरे इतिहासकार नहीं है।
हाँ, नाम तो बहुत बड़ा है इनका।
बिल्कुल, रूसी और सोवियत इतिहास के दुनिया के टॉप एक्सपर्ट्स में से एक हैं। ऑक्सफर्ड में प्रोफेसर रहे, स्टैनफोर्ड के हूवर इंस्टीट्यूशन से जुड़े हैं। मतलब इनकी पूरी जिंदगी सोवियत यूनियन, उसके लीडर्स, उसकी आइडियोलॉजी, इसी को समझने में निकली है।
और सर्विस की एक खास बात है जिसने इस किताब को इतना अहम बना दिया। वो ये कि जब सोवियत संघ टूटा 91 के बाद,
हाँ, जब आर्काइव्स खुले,
हाँ, जब कई सीक्रेट सरकारी दस्तावेज पहली बार बाहर आए, सर्विस उन तक पहुंचने वाले शुरुआती वेस्टर्न हिस्टोरियंस में थे। उन्हें रूसी भाषा भी आती है,
जो बहुत जरूरी है।
बिल्कुल, और उन्होंने सिर्फ स्टालिन पर ही नहीं, लेनिन और ट्रॉट्स्की पर भी ऐसी ही बड़ी जीवनियां लिखी हैं। तो स्टालिन पर यह किताब एक तरह से उस तिकड़ी लेनिन ट्रॉट्स्की स्टालिन की स्टडी को पूरा करती है।
हाँ, और यही तुलनात्मक नजरिया उन्हें एक अलग गहराई देता है। वो स्टालिन को आइसोलेशन में नहीं देखते, उसे लेनिन के पॉलिटिकल वारिस और ट्रॉट्स्की के कट्टर दुश्मन के रूप में देखते हैं।
इससे पता चलता है कि वो कहाँ फिट होता है उस पूरी कहानी में।
एग्जैक्टली, कैसे उसने अपने साथियों को पछाड़ा, और उनकी लिखने की स्टाइल भी कमाल की है। मतलब गहरी रिसर्च है, लेकिन आम पढ़ने वाले के लिए भी दिलचस्प कहानी की तरह है। वो सिर्फ फैक्ट्स नहीं रखते,
हाँ वो कहानी सुनाते हैं।
वो स्टालिन के दिमाग में झांकने की कोशिश करते हैं, उसे समझने की, सिर्फ एक मॉन्स्टर लेबल लगाकर छोड़ नहीं देते।
तो फिर ये किताब है किस बारे में? जाहिर है स्टालिन की कहानी है योसेफ विसारियोनोविच जुगाश्विली।
हाँ, उसका असली नाम,
उसके जन्म से लेकर मौत तक का पूरा सफर, लगभग 600 पन्नों की ये किताब उनके जीवन के हर दौर को कवर करती है। बचपन, क्रांतिकारी बनना, सत्ता तक पहुंचना, उसका राज, वर्ल्ड वॉर टू और आखिरी साल।
लेकिन ये सिर्फ घटनाओं का कच्चा चिट्ठा नहीं है। जैसा हमने कहा, किताब का मेन मकसद स्टालिन की बनी बनाई इमेज को चैलेंज करना है।
हाँ, वो या तो दानव या देवता वाली इमेज।
बिल्कुल, सर्विस ना तो उसे सिर्फ पागल कातिल मानते हैं, ना ही सोवियत यूनियन का महान निर्माता। वो ये समझने की कोशिश करते हैं कि स्टालिन ने जो किया वो क्यों किया। क्या वो सिर्फ पावर हंग्री था, या उसकी कोई आइडियोलॉजी भी थी?
और यहीं पर सर्विस का सेंट्रल आर्ग्यूमेंट आता है ना?
हाँ बिल्कुल, वो कहते हैं कि स्टालिन सिर्फ एक बेरहम तानाशाह नहीं था, वो दिल से, मतलब कन्विक्शन से, एक कट्टर मार्क्सवादी लेनिनवादी था। हाँ, उसकी अपनी इंटरप्रिटेशन थी जो बहुत अनोखी और बेहद क्रूर थी। हाँ, लेकिन उसकी जड़ें आइडियोलॉजी में थी।
तो सर्विस ये नहीं मानते कि स्टालिन ने बस क्रांति को हाईजैक कर लिया।
नहीं, वो इस विचार को खारिज करते हैं। उनके मुताबिक स्टालिन की नीतियां, उसकी क्रूरता, उसके बड़े पैमाने के सोशल एक्सपेरिमेंट्स, ये सब उसके वैचारिक विश्वासों से जुड़े थे। वो सच में मानता था कि वो इतिहास बना रहा है, एक नई दुनिया गढ़ रहा है।
और किताब ये भी कहती है कि स्टालिन का आतंक और दमन, वो लेनिन के आदर्शों से पूरी तरह अलग नहीं था।
हाँ, ये एक और बड़ा पॉइंट है। सर्विस तर्क देते हैं कि स्टालिन का टेरर बोल्शेविक क्रांति के आदर्शों से कोई बहुत बड़ा भटकाव नहीं था, बल्कि लेनिन ने जो तरीके शुरू किए थे, एक पार्टी का राज, सीक्रेट पुलिस, असहमति को कुचलना, आतंक का इस्तेमाल स्टालिन ने उन्हीं को बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर और बेरहमी से इस्तेमाल किया।
तो एक तरह से ये लेनिनिज्म का ही एक्सटेंशन था, लेकिन एक बहुत ही भयानक रूप में।
हाँ, सर्विस यही दिखाते हैं कैसे स्टालिन की अपनी पर्सनैलिटी, उसका शक करने का स्वभाव, बदला लेने की आदत, उसका जॉर्जियन बैकग्राउंड और लेनिनवादी आइडियोलॉजी के तत्व, ये सब मिलकर एक एक विनाशकारी सिस्टम में बदल गए। व्यक्ति और व्यवस्था दोनों को देखना जरूरी है।
चलिए आप थोड़ा किताब के अंदर चलते हैं। स्टालिन की जिंदगी के अलग अलग पड़ावों को सर्विस कैसे देखते हैं। शुरुआत उसके बचपन और शुरुआती सालों से होती है, 1878-1917।
हाँ, जॉर्जिया के गोरी शहर में जन्म। गरीबी, पिता शराबी थे जो उसे मारते भी थे। माँ बहुत स्ट्रांग थी, उनके बड़े सपने थे बेटे के लिए। फिर उसे तिफ्लिस के धार्मिक स्कूल, मतलब सेमिनारी भेजा गया
पादरी बनाने के लिए।
हाँ, वो होनहार छात्र था, लेकिन वहीं उसके मन में अथॉरिटी के खिलाफ विद्रोह भी पनपा और वहीं वो मार्क्सवादी लिटरेचर के संपर्क में आया। दिलचस्प बात यह है कि वो जवानी में सोसो के नाम से कविताएं भी लिखता था।
अच्छा, ये तो कम लोग जानते होंगे।
हाँ, लेकिन ये कवि वाला रूप जल्दी ही पीछे छूट गया और कोबा नाम का एक सख्त जान क्रांतिकारी सामने आया। पार्टी के लिए बैंक लूटना, हड़तालें करवाना, कई बार गिरफ्तार होना, साइबेरिया भेजा जाना, वहां से भाग निकलना,
ये सब चलता रहा।
बिल्कुल,
सर्विस दिखाते हैं कि इन्हीं शुरुआती सालों में स्टालिन के कैरेक्टर की नींव पड़ी। गहरा शक, जबरदस्त ऑर्गेनाइजिंग स्किल, डिसिप्लिन, हिंसा का इस्तेमाल करने की आदत और एक तरह का गजब का कॉन्फिडेंस, ये गुण बाद में उसके रूल की पहचान बने। फिर आता है सत्ता में ऊपर चढ़ने का दौर, 1917 से 1929। 1917 की क्रांति में स्टालिन का रोल था, पर लेनिन या ट्रॉट्स्की जितना बड़ा नहीं था शायद।
हाँ, उतना फ्लैशी नहीं था। उसे राष्ट्रीयताओं के मामलों का मंत्री बनाया गया, इससे उसे एडमिनिस्ट्रेशन का अनुभव मिला। लेकिन असली टर्निंग पॉइंट आया 1922 में,
जब उसे पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया।
एग्जैक्टली, ये पोस्ट उस वक्त बहुत ग्लैमरस नहीं मानी जाती थी। उसके राइवल्स ने इसे एक क्लर्क का काम समझा। अरे, ये तो बस कागजी काम है।
और यही उन्होंने गलती कर दी,
सबसे बड़ी भूल। स्टालिन ने इस बोरिंग पोस्ट को पार्टी के पूरे ऑर्गेनाइजेशन पर पकड़ बनाने के हथियार में बदल दिया। अपॉइंटमेंट्स, इन्फॉर्मेशन फ्लो, अंदर की पॉलिटिक्स, सब पर उसका कंट्रोल हो गया।
तो वो पर्दे के पीछे से काम कर रहा था।
बिल्कुल। लेनिन की मौत हुई 1924 में। उसके बाद उसने खुद को लेनिन के सबसे वफादार चेले के तौर पर पेश किया और फिर बड़ी चालाकी से आइडियोलॉजिकल डिबेट्स का इस्तेमाल करके उसने पहले ट्रॉट्स्की और उसके लेफ्ट ऑपोजिशन को साइडलाइन किया,
फिर ज़िनोवियेव और कामेनेव।
हाँ, और आखिर में बुखारिन और राइट ऑपोजिशन को। 1929 आते आते उसने पार्टी पर लगभग पूरा कंट्रोल हासिल कर लिया था, सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि ब्यूरोक्रेसी और अंदरूनी राजनीति की माहिर चालों से।
और फिर आता है वो दशक जो स्टालिन के नाम के साथ सबसे ज्यादा जुड़ा है, महान परिवर्तन और महान आतंक का दौर, 1929 से 1939। इसे ऊपर से क्रांति कहते हैं।
हाँ, रेवोल्यूशन फ्रॉम अबव। स्टालिन ने तेजी से औद्योगिकीकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन और जबरदस्ती कृषि के सामूहिकीकरण, कलेक्टिवाइजेशन की पॉलिसीज लागू की। कलेक्टिवाइजेशन मतलब सारी जमीन छीनकर सरकारी कंट्रोल में लाना। ये बहुत ही बेरहमी से किया गया।
हाँ, कुलक वाली बात।
बिल्कुल। जो थोड़े भी संपन्न किसान थे उन्हें कुलक यानी क्लास एनिमी कहकर खत्म किया गया। लाखों लोगों को मारा गया या लेबर कैंप्स में भेज दिया गया। इसका नतीजा भयानक अकाल पड़ा, खासकर यूक्रेन में, जिसे होलोडोमोर कहते हैं। लाखों लोग भूख से मर गए।
और सर्विस का तर्क है कि ये सिर्फ पॉलिसी फेलियर नहीं था।
नहीं, सर्विस कहते हैं कि ये जानबूझकर किया गया था, किसानों का विरोध तोड़ने के लिए और शहरों के इंडस्ट्रीज के लिए अनाज और पैसा जुटाने के लिए। एक तरह की इंटरनल वॉर थी किसानों के खिलाफ।
उफ, और इसी दशक में फिर वो ग्रेट टेरर भी आया।
हाँ, 1936 से 38 के बीच महान आतंक, या येजोव शीना, उस वक्त के सीक्रेट पुलिस चीफ येजोव के नाम पर। इसकी फॉर्मल शुरुआत तो किरोव नाम के एक नेता की हत्या 1934 के बाद हुई,
जिसमें शक स्टालिन पर भी जाता है।
सर्विस इसी तरफ इशारा करते हैं। इसके बाद तो पूरे देश में गिरफ्तारियां और हत्याओं का तूफान आ गया। मॉस्को में शो ट्रायल्स हुए, पुराने बोल्शेविक लीडर्स से टॉर्चर करके झूठे कन्फेशन लिए गए और उन्हें गोली मार दी गई।
लेकिन ये सिर्फ टॉप लीडर्स तक ही सीमित नहीं था ना।
बिल्कुल नहीं, यही सबसे भयानक बात थी। सीक्रेट पुलिस एनकेवीडी को कोटा दिया गया था कि इतने लोगों को दुश्मन बताकर पकड़ना या मारना है, लाखों आम नागरिक, फौजी अफसर, लेखक, साइंटिस्ट, माइनॉरिटी ग्रुप्स के लोग सब इसका शिकार बने।
और स्टालिन पर्सनली इन्वॉल्व था इसमें।
सर्विस डॉक्यूमेंट्स के हवाले से बताते हैं कि हाँ, वो पर्सनली इस पूरे ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहा था। हजारों डेथ वारंट्स पर उसने खुद साइन किए हैं। इसे पागलपन कहना बहुत आसान है, पर सर्विस इसे एक ठंडे दिमाग की लेकिन राक्षसी स्ट्रैटेजी मानते हैं। मकसद, हर तरह के विरोध की संभावना को जड़ से खत्म करना, अपनी सत्ता को एब्सोल्यूट बनाना।
इसके बाद किताब वर्ल्ड वॉर टू 1939-1945 पर आती है। रूस में इसे महान देशभक्तिपूर्ण युद्ध कहते हैं।
हाँ, शुरुआत होती है 1939 में नाजी जर्मनी के साथ हुए उस बदनाम मोलोटोव रिबेंट्रॉप पैक्ट से, एक नॉन अग्रेशन पैक्ट
जो बाद में टूट गया।
बिल्कुल, सर्विस कहते हैं कि ये आइडियोलॉजी का मेल नहीं था, ये स्टालिन की तरफ से वक्त खरीदने और ईस्टर्न यूरोप में अपना दबदबा बढ़ाने की एक प्रैक्टिकल चाल थी। लेकिन फिर स्टालिन ने एक बहुत बड़ी गलती की,
हिटलर के हमले को नजरअंदाज करना।
हाँ, जून 1941 में हिटलर ने हमला किया, ऑपरेशन बारबरोसा। स्टालिन को इंटेलिजेंस वार्निंग्स मिली थीं, पर उसने यकीन नहीं किया या शायद करना नहीं चाहा।
और शुरुआत में तो सोवियत फौज को भारी नुकसान हुआ,
बहुत भारी। कहा जाता है कि स्टालिन कुछ वक्त के लिए लगभग टूट गया था, लेकिन फिर उसने जबरदस्त वापसी की। वो सुप्रीम कमांडर बना, बहुत क्रूअल डिसिप्लिन लागू किया, जैसे वो फेमस ऑर्डर नंबर 227, एक कदम भी पीछे नहीं।
उसने फिर राष्ट्रवाद का सहारा लिया।
हाँ, रूसी नेशनलिज्म को उभारा, चर्च का सपोर्ट भी लिया जो पहले दबाया गया था, और वो भारी से भारी इंसानी कीमत चुकाने को तैयार था। साथ ही वेस्टर्न अलाइज चर्चिल और रूजवेल्ट के साथ तेहरान, याल्टा, पोट्सडम कॉन्फ्रेंस में वो एक टफ और चालाक नेगोशिएटर साबित हुआ,
जिसने पोस्ट वॉर ईस्टर्न यूरोप की किस्मत तय करने में बड़ा रोल निभाया।
बिल्कुल, तो सर्विस उसे क्रूर, गलतियां करने वाले लेकिन आखिर में जंग जिताने वाले लीडर के तौर पर देखते हैं।
और फिर आते हैं स्टालिन के आखिरी साल 1945-1953। कोल्ड वॉर शुरू हो चुका था।
हाँ, जंग जीतने के बाद भी स्टालिन का शक और वहम कम नहीं हुआ, बल्कि और बढ़ गया। दुनिया दो कैंप में बढ़ गई, न्यूक्लियर रेस शुरू हुई, देश के अंदर भी दमन का नया दौर चला जिसे लेनिनग्राद अफेयर,
कॉस्मोपॉलिटनिज्म के खिलाफ कैंपेन भी था।
हाँ, रूटलेस कॉस्मोपॉलिटनिज्म, जो असल में एंटी सेमिटिक यानी यहूदी विरोधी था। और उसकी मौत से ठीक पहले वो डॉक्टर्स प्लॉट वाली साजिश सामने आई, जिसमें ज्यादातर यहूदी डॉक्टरों पर इल्जाम लगाया गया कि वो बड़े लीडर्स को मारने की साजिश कर रहे हैं।
ये सब क्या था, पैरानोया?
सारिस एक बूढ़े अकेले पढ़ते जा रहे और इराटिक तानाशाह की तस्वीर खींचते हैं, जो चापलूसों से घिरा था लेकिन किसी पर भरोसा नहीं करता था। मार्च 1953 में स्ट्रोक से उसकी मौत हुई और अपने पीछे वो उत्तराधिकार के लिए एक अनिश्चितता और डर का माहौल छोड़ गया।
तो इस लंबी और काफी डार्क कहानी से रॉबर्ट सर्विस क्या मुख्य बातें निकालते हैं, क्या की टेकअवेज हैं?
देखो, पहली और शायद सबसे अहम बात है व्यक्तिगत मनोविज्ञान और राजनैतिक शक्ति का वो खतरनाक संगम। सर्विस बार बार दिखाते हैं कि कैसे स्टालिन के अपने पर्सनल ट्रेट्स, उसका गहरा शक, बदला लेने की आदत, हर चीज कंट्रोल करने की जरूरत, ये सब सोवियत स्टेट की पॉलिसी बन गई।
जैसे उसका निजी डर पूरे समाज का डर बन गया।
हाँ बिल्कुल, ये सोचने पर मजबूर करता है कि लीडर्स का पर्सनल कैरेक्टर, खासकर जब उनके पास अनलिमिटेड पावर हो, कितना ज्यादा असर डाल सकता है।
दूसरा पॉइंट क्या है?
दूसरा है वैचारिक विश्वास और प्रैक्टिकल चालाकी का मिक्सचर। सर्विस जोर देते हैं कि स्टालिन सचमुच मार्क्सिज्म लेनिनिज्म में यकीन रखता था। वो मानता था कि वो हिस्ट्री के सही साइड पर है, एक बेहतर दुनिया बना रहा है, लेकिन साथ ही वो एक बहुत शातिर पॉलिटिकल ऑपरेटर था,
जो आइडियोलॉजी को अपनी पावर बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करता था।
एग्जैक्टली, विरोधियों को खत्म करने के लिए। यह हमें दिखाता है कि आइडियोलॉजी और पावर का रिश्ता कितना कॉम्प्लेक्स होता है। ऊंचे आदर्शों का इस्तेमाल बहुत बुरे कामों को जस्टिफाई करने के लिए भी किया जा सकता है।
तीसरा पॉइंट था लेनिन से स्टालिन तक की कंटिन्यूटी। ये थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल भी है शायद।
हाँ, क्योंकि आमतौर पर माना जाता है कि स्टालिन ने लेनिन के आइडियल्स को धोखा दिया, लेकिन सर्विस का तर्क अलग है। वो कहते हैं कि स्टालिन ने असल में लेनिन द्वारा बनाए गए टूल्स, जैसे वन पार्टी स्टेट, सीक्रेट पुलिस, विरोध को कुचलना, टेरर का इस्तेमाल, उन्हीं को अपनाया और उन्हें बहुत बड़े स्केल पर और ज्यादा बेरहमी से लागू किया।
तो उनके हिसाब से स्टालिनिज्म लेनिनिज्म से निकला था, उसका बिगड़ा हुआ रूप था।
हाँ, उसका एक चरम भयानक रूप। ये पॉलिटिकल सिस्टम्स में चेंज और कंटिन्यूटी को समझने का एक अलग नजरिया देता है।
चौथा, सर्विस स्टालिन की एक और इमेज को तोड़ते हैं कि वो सिर्फ एक अनपढ़ या कम बुद्धि वाला गुंडा था।
वो क्रूड जॉर्जियन वाली इमेज। किताब बताती है कि स्टालिन बहुत पढ़ता था। उसकी पर्सनल लाइब्रेरी में हजारों किताबें थी जिन पर वो अक्सर नोट्स लिखता था, मार्जिन में लिखता था।
अच्छा।
हाँ, वो खुद भी लिखता और एडिट करता था, खासकर आइडियोलॉजी से जुड़े मामलों पर। शायद वो कोई ओरिजिनल थिंकर नहीं था, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स आइडियाज को सिंपल हार्ड हिटिंग स्लोगन्स और प्रिंसिपल्स में बदलने में माहिर था, जिन्हें फिर लागू किया जा सके।
तो इंटेलेक्चुअल कंट्रोल भी पावर का एक रूप है।
बिल्कुल। और पांचवा पॉइंट है डर का एक इंस्टीट्यूशन की तरह इस्तेमाल। सर्विस के एनालिसिस में स्टालिन के राज में टेरर कोई एक्सीडेंटल बाय प्रोडक्ट नहीं था, वो सिस्टम का सेंट्रल पिलर था।
मतलब अकाल, परजेज, जासूसी का माहौल।
हाँ, इन सब का इस्तेमाल समाज को तोड़ने, लोगों के बीच भरोसे को खत्म करने और ये पक्का करने के लिए किया गया कि हर कोई सिर्फ और सिर्फ स्टालिन के प्रति लॉयल रहे। डर को एक पॉलिटिकल वेपन की तरह इस्तेमाल किया गया पूरे समाज को कंट्रोल में रखने के लिए।
सर्विस की किताब स्टालिन के कुछ ऐसे विचारों या कही गई बातों पर भी रोशनी डालती है जो उसकी सोच को दिखाते हैं। ये शब्दशः उद्धरण हो या ना हो, पर उसकी मानसिकता की झलक देते हैं।
हाँ, जैसे वो एक विचार जिसे अक्सर स्टालिन से जोड़ा जाता है, मौत सभी समस्याओं का हल है, इंसान नहीं तो समस्या नहीं। अब ये उसने सच में कहा या नहीं, ये बहस का मुद्दा है, पर ये उसके राज करने के तरीके को तो दिखाता ही है।
हाँ, कि पॉलिटिकल या सोशल प्रॉब्लम्स का हल लोगों को एलिमिनेट करने में है।
बिल्कुल। इंसानी जिंदगी की कोई कीमत ही नहीं, वो बस एक साधन है।
या फिर उसका वो मशहूर कथन कि लेखक मानव आत्मा के इंजीनियर होते हैं।
हाँ हाँ, ये दिखाता है कि वो कल्चर, लिटरेचर, आर्ट्स को कितना महत्व देता था, लेकिन एक हथियार की तरह। उसका मानना था कि इंसानी सोच और भावनाओं को आइडियोलॉजी के हिसाब से मोल्ड किया जा सकता है।
ये उसकी एम्बिशन दिखाता है कि वो सिर्फ बॉडीज पर नहीं, माइंड्स पर भी रूल करना चाहता था।
एग्जैक्टली। एक और विचार जो उसके गहरे शक को दिखाता है, मैं किसी पर भरोसा नहीं करता, खुद पर भी नहीं। ये शायद थोड़ी बड़ा चढ़ाकर कही गई बात हो, लेकिन ये उस अकेलेपन और परमानेंट सस्पेशन को दिखाता है जो शायद एब्सोल्यूट पावर के साथ आता है।
जब हर कोई दुश्मन या पोटेंशियल खतरा लगे।
हाँ, तो आप खुद भी अपनी ही बनाई जेल में कैद हो जाते हैं।
और ये दिल दहला देने वाला विचार, एक मौत त्रासदी है, लाखों मौतें एक आंकड़ा।
अ सिंगल डेथ इज अ ट्रेजेडी, अ मिलियन डेथ्स इज अ स्टैटिस्टिक। उफ, ये दिखाता है कि कैसे बड़े स्केल की हिंसा इंसान को डिसेंसिटाइज कर सकती है। जब हत्याएं लाखों में हों तो वो सिर्फ नंबर बन जाती हैं, उनके पीछे का इंसानी दुख खो जाता है। ये शायद खुद को गिल्ट से बचाने का एक साइकोलॉजिकल तरीका भी रहा हो।
और आखिर में जब किसी ने पोप के असर की बात की तो स्टालिन का वो कथित सवाल, पोप उसके पास कितने डिवीजन है।
हाँ, ये उसकी प्योर मटीरियलिस्टिक सोच दिखाता है। उसके लिए पावर का मतलब सिर्फ मिलिट्री या इकोनॉमिक ताकत थी, मॉरल या स्पिरिचुअल अथॉरिटी का कोई मतलब नहीं था।
तो ये सब इतिहास की बातें हैं, लेकिन आज हमारे लिए इनका क्या मतलब है? हम रॉबर्ट सर्विस की इस किताब से आज की दुनिया के लिए क्या सीख सकते हैं?
देखो, पहली बात तो ये कि तानाशाही के पैटर्न को पहचानना जरूरी है। स्टालिन ने जिस तरह धीरे धीरे पावर कंसोलिडेट की, ब्यूरोक्रेसी का इस्तेमाल किया, विरोधियों को साइडलाइन किया, मीडिया को कंट्रोल किया, अपनी कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी बनाई, ये तरीके आज भी दुनिया में अलग अलग रूपों में अथॉरिटेरियन लीडर्स अपनाते हैं।
तो ये हमें डेमोक्रेसी, इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस और चेक्स एंड बैलेंसेस की इम्पोर्टेंस याद दिलाता है।
बिल्कुल। दूसरी सीख है आइडियोलॉजिकल मैनिपुलेशन के प्रति अलर्ट रहना। स्टालिन ने सोशलिज्म और इक्वालिटी जैसे ऊंचे आइडियल्स का इस्तेमाल करके कितने भयानक काम किए, ये हमें सिखाता है कि किसी भी आइडियोलॉजी या मूवमेंट के लिए आंख बंद करके समर्पित नहीं होना चाहिए, खासकर अगर वो ये कहे कि एंड जस्टिफाइज द मीन्स, मतलब मकसद हासिल करने के लिए कोई भी तरीका जायज है, चाहे वो कितना भी क्रूर क्यों ना हो।
तीसरा, सत्ता के केंद्रीकरण का खतरा, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर।
हाँ, स्टालिन का रूल इस बात का टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है कि जब सारी ताकत एक आदमी या एक छोटे से ग्रुप के हाथ में आ जाती है तो वो कितनी डिस्ट्रक्टिव हो सकती है। वो लॉर्ड एक्टन वाली बात है ना, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली।
स्टालिन के केस में तो ये बिल्कुल सच लगती है।
हाँ, चेक्स एंड बैलेंसेस का ना होना कितना खतरनाक है, ये किताब दिखाती है।
और चौथा पॉइंट, सच और इतिहास का मैनिपुलेशन।
हाँ, स्टालिन प्रोपेगेंडा का मास्टर था। उसने हिस्ट्री को रीराइट करवाया, फोटोग्राफ से लोगों को गायब करवाया, अपने आसपास एक व्यक्ति पूजा का माहौल बनाया। ये हमें आज के फेक न्यूज, डिसइन्फॉर्मेशन और इन्फॉर्मेशन कंट्रोल की कोशिशों के प्रति सचेत करता है। सच की लड़ाई आज भी उतनी ही जरूरी है।
तो अगर हम रॉबर्ट सर्विस की स्टालिन से कोई एक सबसे बड़ी बात निकालें तो वो क्या होगी?
मेरे ख्याल से शायद सबसे बड़ा सबक यह है कि बहुत बड़ी बुराई अक्सर किसी सनकी पागलपन का नतीजा नहीं होती। वो एक कोहेरेंट, लॉजिकल, भले भयानक वर्ल्ड व्यू और आइडियोलॉजी से निकलती है। स्टालिन इतिहास का कोई एक्सीडेंट नहीं था, वो अपनी पर्सनालिटी, अपने आइडियाज और अपने समय के हालात की एक कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट था। वो शायद सच में मानता था कि वो एक बेहतर दुनिया बना रहा है, और उसी कन्विक्शन ने उसे वो सब करने की इजाज़त दी जो उसने किया।
और किताब की एक और गहरी बात यह है कि एब्सोल्यूट पावर की कीमत सिर्फ वो लोग नहीं चुकाते जो उसके शिकार होते हैं, बल्कि वो भी चुकाता है जो उसे हासिल करता है। स्टालिन का बढ़ता शक, उसका अकेलापन, किसी पर भरोसा न कर पाना, ये सब उसी पावर की देन थी जिसने उसे बाहरी दुनिया से और शायद खुद से भी काट दिया था।
बिल्कुल, सर्विस का बड़ा कंट्रीब्यूशन स्टालिन की ऐसी जटिल मल्टी डायमेंशनल तस्वीर पेश करना है जो हमें वार्न करती है कि कैसे अच्छे इरादों वाले विचार भी अगर बेलगाम हो जाएं तो कितने विनाशकारी बन सकते हैं। ये इतिहास की एक ऐसी किताब है जो हमें आज भी बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।